मेरे प्रिय मित्रों नमस्कार। आज 6 नवंबर 2020 है, दिन है शुक्रवार और आज के इस एफईआईएस के लाइफ मैनेजमेंट में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। दोस्तों, स्वागत के साथ ही साथ मैं आज विशेष रूप से आप सबका बहुत बहुत हृदय से अभिनंदन भी करता हूं। बहुत बहुत अभिनंदन और हृदय तो मेरे पास एक ही है, लेकिन फिर भी मैं कहना चाहूंगा बहुत बहुत हृदयों से बहुत बहुत अभिनंदन। कभी कभी कुछ बहुत विचित्र किस्म की घटनाएं घटित होती हैं। कल भी कुछ ऐसा ही हुआ। मैंने कुछ दिनों पहले इस सप्ताह ही आप लोगों को अपनी एक लघु कथा सुनाई थी। उस लघु कथा पर आप लोगों की प्रतिक्रियाएं मिली और जब लघु कथा पर प्रतिक्रियाएं मिली तो फिर से मेरे दिमाग में एक विचार आया कि क्यों ना थोड़ी सी बातें पुस्तकों के बारे में कर ली जाए, साहित्य के बारे में कर ली जाए। कल मैंने फिर उसके बारे में थोड़ी सी बातें आप सबसे की थी और इसके बाद जो मुझे मेल मिले हैं उस मेल के आधार पर ही मैं इतना भाव विह्वल हो उठा कि मुझे लगा कि नहीं, मुझे अपने प्रिय श्रोताओं के प्रति आभार व्यक्त करना ही चाहिए। यदि आप चाहें तो इसे मुक्त कंठ से की गई प्रशंसा भी कह सकते हैं। कल बहुत से मेल मुझे इस आशय के मिले हैं कि सर आप किताबों के बारे में कुछ और बताइए। किताबों के बारे में आश्चर्यचकित रह गया, किताबों के बारे में कुछ और बताइए। मतलब आज जबकि बच्चे बच्चे के हाथ में स्मार्टफोन है, घर के हर कमरे में टीवी रखा हुआ है, उस दौर में अगर कोई कहे कि किताबों के बारे में कुछ और बताइए तो क्या आपको नहीं लगता कि सच में ये भाव विह्वल हो जाने की बात है, कहीं ना कहीं रोमांचित महसूस करने की बात है और सच पूछिए तो कहीं ना कहीं आश्चर्य की भी बात है। यानी कि किताबों की दुनिया को जानने की जिज्ञासा क्या सच में आज भी बची हुई है? और मैं जानता हूं कि मेरा जो लाइफ मैनेजमेंट है और डेली ऑडियो लेक्चर है, इसे सुनने वाला जो वर्ग है, ज्यादा बड़ा वर्ग वो युवाओं का है। तो मैं ये मान करके चल रहा हूं कि मुझे जो मेल भी लिखे जाते हैं उस मेल में लगभग 95% युवा ही होते हैं, यानी कि युवा किताब के बारे में जानना चाहते हैं और ये वो युवा हैं जो भी किताबों के बीच में ही हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? यह प्रॉब्लम यह है कि अभी वो जिन किताबों के बीच में हैं वह उनके सिलेबस की किताबें हैं, उनके क्लासरूम की किताबें हैं। ये ऐसी किताबें हैं जो उनमें ऊब पैदा करती हैं, ये ऐसी किताबें हैं जिनसे वो भयभीत रहते हैं, उनसे दोस्ती नहीं हो पाती और भयभीत रहने के कारण बस कोशिश ये रहती है कि जल्दी से जल्दी इन किताबों से मुक्ति मिल जाए। वो भी किताबें हैं लेकिन वो एक दूसरी दुनिया के बारे में जानना चाहते हैं, और लेकिन है वो किताबों की दुनिया, तो वो दूसरी दुनिया क्या है? दोस्तों, ये जो दूसरी दुनिया है किताबों की, ये अद्भुत दुनिया है। और सच पूछिए तो जैसे ही आपने कहा किताबों की दुनिया तो मुझे फिर अपनी दुनिया याद आ गई। और अब जबकि मैं आपके लिए अपना ये प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहा हूं, मैं अपने किताबों की दुनिया में ही बैठा हुआ हूं। मेरा एक बहुत छोटा सा प्यारा सा कमरा है, ये कमरा नहीं है, मेरी व्यक्तिगत लाइब्रेरी है। इस लाइब्रेरी की छत को छोड़कर के जिधर भी मेरी निगाह जाती है किताबों से सजी हुई अलमारियां दिखाई देती हैं, और वो जो किताबें हैं वो बकायदे कांच से मुझे झांकती हुई दिखाई देती हैं। और कभी कभी तो मुझे ऐसा भी महसूस होता है कि मेरी किताबें कहीं सांस तो नहीं ले रही हैं। इसी फ्लोर पर मंदिर है मेरा छोटा सा, उसमें पूजा करने के बाद, उसमें अगरबत्ती और बत्ती लगाने के बाद, घी की बत्ती लगाने के बाद, मैं हमेशा अपनी लाइब्रेरी में आता हूं और एक अगरबत्ती अपनी लाइब्रेरी में भी लगाता हूं। सच पूछिए तो जो मेरी लाइब्रेरी है, जो मेरी किताबों की दुनिया है, वो मेरा मंदिर है और यहां जितनी भी किताबें हैं वो मेरे एक एक देवी और देवता हैं। ये किताबों के साथ मेरा रिश्ता है। मुझे याद आते हैं अपने बचपन के दिन की, जब मैं अंबिकापुर में था तो वहां एक किताबों की दुकान हुआ करती थी, सेठी बुक स्टोर या सेठी बुक सेंटर, एग्जैक्ट नाम मुझे मालूम नहीं है लेकिन सेठी शब्द पहले उसमें लगा होता था। सेठी साहब थे, थोड़े से मझोले कद के थे, थोड़ा सा शरीर उनका भारी था, कुर्ता पहनते थे और चूड़ीदार पैजामा पहनते थे। जब भी उनके यहां कोई किताब लेने जाता था, इतने प्रेम से वो किताबें देते थे, ऐसा लगता था जैसे वो अपने घर की कोई चीज किसी दूसरे को हमेशा हमेशा के लिए दे रहे हो, जबकि वो दुकानदार थे। बोलते बहुत कम थे, लेकिन उनके चेहरे को मैं भी याद करके महसूस कर सकता हूं कि उन्हें लगता ऐसे था जैसे कि वो अपने कोई घर की चीज दे रहे हैं, दुकान की चीज दे रहे हैं, नहीं लगता था। और जब भी मैं किताबें लेता था तो सबसे पहले उसकी कीमत चुकाने के बाद मैं उसे सूंघता था, और कितनी बार सूंघता था मैं आपको बता नहीं सकता। और कुछ दिनों तक मैं उस किताब को खोल खोल करके अलग अलग पन्नों को, हालांकि आप इन सबको बेवकूफी भरी बातें कहेंगे, सूंघता ही रहता था तब तक जब तक कि वह किताबों की सुगंध मेरे अंदर न समा जाए और बाहर की सुगंध और किताबों की सुगंध और मेरे अंदर की सुगंध एक न हो जाए। और सच पूछिए तो उस समय जब मैं किताबें खरीदने जाता था तो कुछ ऐसे पेरेंट्स आते थे जो अपने बच्चों के लिए एक साथ पूरे के पूरे कोर्स की किताबें खरीद के ले जाते थे। मेरी ऐसी हैसियत नहीं थी कि मैं एक साथ अपने कोर्स की पूरी किताबें खरीद सकूं, तो मैं एक एक किताब खरीदने जाता था। इसीलिए उस दुकान में भी मुझे कई बार जाना पड़ता था, और इसे भी समझ लीजिए कि मैं कहीं ना कहीं अपना सौभाग्य ही मानता हूं कि इसी बहाने ही सही चलिए मैं किताबों की दुकान में कई कई बार जाने का मुझे मौका मिल जाता है। तो मैं देखता था कि वो एक साथ कई कई किताबें, 10-10, 15-15 किताबों के बंडल बना करके खरीद करके ले जा रहे हैं, तो मुझे बहुत अफसोस होता था। और उस समय हमेशा मुझे अपने पिता की याद आती थी। मुझे लगता था कि काश अगर मेरे भी पिता होते तो मैं भी उनकी उंगली पकड़ के या हाथ पकड़कर इस किताब की दुकान पर आता और एक साथ ढेर सारी किताबें खरीद कर ले जाता, लेकिन ऐसा संभव नहीं हो पाता था। मुझे बहुत अच्छे से मालूम है कि जब मैं एमए में पढ़ रहा था तो उसी समय अंबिकापुर में ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना हुई। अमीक हनफी जी जो बहुत ही छोटे कद के थे, उनके साथ मेरी साम्यता ये थी कि हम दोनों का कद काफी कुछ एक जैसा होता था, तो उन्होंने कॉलेज के उन स्टूडेंट को प्रोग्राम में बुलाने का फैसला किया जो लिटरेचर से एमए कर रहे हैं। मैं भी उनमें से एक था, तो ऑल इंडिया रेडियो जाना शुरू हो गया। उसमें युवाणी प्रोग्राम में हम लोगों को कार्यक्रम मिलने लगे, तो उसमें एक कार्यक्रम के 25 रुपए मिलते थे। और जब इस तरह से हम लोगों के कार्यक्रम की शुरुआत हुई तो सबसे पहले वहां पर एक फिर से किताब की दुकान खुल गई थी जिसका नाम था किताब घर। वहां मैं गया और मैंने मुक्ति बोध का उस समय काव्य पूरा, उनकी जो रचनाओं का संकलन आया था, 300 रुपए का पूरा सेट था, और दुकान वाले से कहा कि मुझे आप क्या उधारी में ये दे सकते हैं, मैं आपको हर महीने 25-25 रुपए करके उसका भुगतान कर दूंगा। और उन्होंने किताबों का वह सेट मुझे दिया और वह सेट आज भी मेरे पास है। और जब भी मैं रिकॉर्डिंग करता हूं तो बिल्कुल मेरे सामने वाली अलमारी के सबसे ऊपर वाले खाने पर किताबों का वह सेट आज भी लगा हुआ है जो मुझे अपने उस काल में मेरी उंगली पकड़ करके ले जाता है। दोस्तों, किताबों की दुनिया बहुत अद्भुत दुनिया है, बशर्ते कि आप सब इसे महसूस कर सकें। और अगर आपने किताबों की दुनिया के साथ अपना रिश्ता कायम कर लिया तो मान करके चलिए कि बाहर की दुनिया जैसी भी हो उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपके पास आपके किताबों की दुनिया है। और किताबों की दुनिया का मतलब है कि आप आंतरिक जगत में अब भ्रमण करने लगे हैं, आंतरिक जगत में रहने लगे हैं। और ये आंतरिक जगत ऐसा जगत होता है जहां कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता। तो क्या मैं समझता हूं कि क्या आज के लिए इतना ही पर्याप्त नहीं होगा? मुझे नहीं मालूम कि मैं किताबों की दुनिया के बारे में कोई बात कर सका हूं या नहीं कर सका हूं। हाँ, ये बात जरूर है कि मैंने अपने किताबों की दुनिया के माध्यम से कहीं ना कहीं हम सब की जो किताबों की दुनिया हो सकती है उसकी बात जरूर कही है। तो मित्रों, 2 दिनों के बाद आप सबसे फिर मुलाकात होगी, तब ढेर सारी बातें होंगी। अपना ख्याल रखें, अपने लोगों का ख्याल रखें, मेरी शुभकामनाएं स्वीकार करें, साथ ही अभिवादन भी। नमस्कार।